नमस्कार। आज हम एक अहम बल्कि शायद सबसे बड़े सवाल पर बात करने जा रहे हैं। हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका असली पक्का इलाज क्या है? क्या कुछ बाहरी चीजें बदल देने से काम चल जाएगा या जड़ कहीं ज्यादा गहरी है?
नमस्कार, बिल्कुल सही सवाल उठाया है और इसका जवाब खोजने के लिए आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार को आधार बना रहे हैं।
हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि हम पूज्य गुरुदेव की इस दृष्टि को समझें कि भाई ये जो हमारे सोचने का ढंग है, हमारी विचारणा, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे, मतलब इसे बदलकर वाकई सब कुछ बदला जा सकता है।
बिल्कुल, तो शुरुआत कहाँ से करें? गुरुदेव कहते हैं मनुष्य दो चीजों से बना है, एक तो ये शरीर काया और दूसरी चेतना।
अच्छा,
अब ये खाना पीना सोना इंद्रियों के मजे लेना ये सब तो देखिए पशु भी करते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है।
हाँ ये तो है।
इंसान की जो असली पहचान है, उसकी जो महत्ता है, वो उसकी चेतना में है, उसकी विचारणा में। यही सोच है जो उसे ऊपर उठाती है, मन को शांति देती है और हाँ, समाज के लिए उपयोगी भी बनाती है।
मतलब किसी इंसान का कद उसकी लंबाई चौड़ाई से नहीं नापा जाता?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका कद तो उसके विचारों के स्तर से, उसकी सोच के लेवल से तय होता है।
अगर विचार ऊंचे हैं, सोच अच्छी है, तो गरीब से गरीब इंसान भी देवता जैसा है।
ये बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाहरी चीजें जैसे महंगे कपड़े या बढ़िया खाना, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असली महानता, शांति, इज्जत और तो और समाज के लिए कोई कितना उपयोगी है, ये सब कुछ सिर्फ सोच पर टिका है।
हाँ बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव हमें याद दिलाते हैं कि हमारे प्राचीन भारत की जो महानता थी, जिसके किस्से हम सुनते हैं, उसका राज भी तो यही था। वहाँ के नागरिकों की सोच बहुत ऊंची थी।
अच्छा, कैसे?
उसे धर्म, अध्यात्म और सही किस्म की शिक्षा से लगातार पोषित किया जाता था, सींचा जाता था। जब लोगों की सोच ऊंची होगी तो देश तो अपने आप महान बनेगा ही। लेकिन आज अगर देखें तो स्थिति बिल्कुल उल्टी सी लगती है। पूज्य गुरुदेव इस पर चिंता भी जताते हैं। वो कहते हैं कि आज जिन चीजों से हमारे विचार बनते हैं, मतलब पुस्तकें, कला, फिल्में, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी जो सिखाया जा रहा है, वो कई बार इंसान को ऊपर उठाने की जगह नीचे गिरा रहा है।
जी, और वो इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण भी बताते हैं। दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पंडावाद और सामंतवाद। पंडावाद से उनका मतलब है वो धर्म के ठेकेदार जिन्होंने ज्ञान को आम लोगों तक सही रूप में पहुंचने ही नहीं दिया, उसे अपने तक सीमित रखा।
अच्छा।
और सामंतवाद यानी वो शासक वर्ग, वो राजे रजवाड़े जिन्होंने जानबूझकर जनता को दिमागी तौर पर बौद्धिक रूप से कमजोर बनाए रखा, गुलाम बनाए रखा,
ताकि
लोग सवाल न उठा सकें, अन्याय के खिलाफ खड़े न हो सकें। बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव का तो यही मानना है कि ये जो बौद्धिक गुलामी थी, यानी सोच पर ताला लगा देना, इसी की वजह से भारत हजारों साल तक बाहरी ताकतों का गुलाम रहा। जब सोचने की समझने की ताकत ही छीन ली जाए तो फिर बाहरी गुलामी तो आनी ही है।
और कमाल ये है कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, पर ये जो दिमागी गुलामी है ये आज भी कई रूपों में जारी है। गुरुदेव उदाहरण भी देते हैं।
हाँ, जैसे?
जैसे ये फिजूल की सामाजिक रस्में, बच्चे का मुंडन कराने के लिए हजारों मील दूर किसी कुल देवी के स्थान पर जाना, क्या तुक है इसका? या फिर वो ज्योतिष, जन्मपत्री का डर दिखाकर लोगों को अपने वश में रखना।
सही कहा, और इसी का एक और नतीजा है नैतिक गिरावट। आज आप देखें, बेईमानी को, काम चोरी को लोग होशियारी समझने लगे हैं, सफलता का शॉर्टकट मान लिया है। ये सब क्या है? ये सब बेअक्कली है, गलत सोच, समझ की कमी, इसी का खेल है सारा। पूज्य गुरुदेव बहुत साफ कहते हैं, इंसान की ज्यादातर मुसीबतें उसकी अपनी ही पैदा की हुई बेअक्कली का नतीजा है।
तो अगर समस्या सोच की है, जड़ वही है, तो इलाज भी तो वही करना होगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति का रास्ता दिखाया। परशुराम जी का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने सहस्र बाहु के सिर काटे थे।
हाँ, पर वो समझाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि गर्दन काट दो। सिर काटने का मतलब है गलत सोच काटना, दुर्बुद्धि का नाश करना, विचारों का परिष्कार करना।
अच्छा, ये मतलब है।
जी, और इसी विचार क्रांति के लिए उन्होंने ज्ञान यज्ञ का आह्वान किया। यज्ञ मतलब सिर्फ लकड़ियां जलाकर हवन करना नहीं, ज्ञान यज्ञ मतलब एक बड़ा अभियान, ऐसा ज्ञान, ऐसी पुस्तकें फैलाना जो लोगों को सही ढंग से सोचना सिखाएं, विवेक जगाएं, जो बताएं कि भाई हमारी समस्याओं की असली जड़ कहाँ है और उसका सही हल कैसे निकलेगा।
और इस ज्ञान यज्ञ में उन्होंने कहा कि सबकी भागीदारी जरूरी है। दो चीजें खासकर कहीं, समयदान और अंशदान।
हाँ,
समयदान और अंशदान
यानी रोज कम से कम एक घंटा इस अच्छे विचार फैलाने के काम में लगाएं, और अंशदान मतलब अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, रोज का कम से कम एक रुपया ही सही, इस ज्ञान को फैलाने के काम के लिए दें। और साथ में ये भी कि हर घर में एक छोटा सा पुस्तकालय जरूर हो, अच्छे विचार बदलने वाली पुस्तकों का संग्रह।
जी, पर गुरुदेव ने एक और बहुत जरूरी बात कही, सिर्फ पुस्तकें घर में रख लेना या लाइब्रेरी बना देना काफी नहीं है।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि आज लोगों में ज्ञान की, पढ़ने की भूख कम हो गई है, रुचि कम हो गई है, तो सिर्फ पुस्तकें रखकर इंतजार नहीं कर सकते कि लोग आएंगे और पढ़ेंगे।
हाँ, ये बात तो है।
इसीलिए उन्होंने झोला पुस्तकालय का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल व्यावहारिक सुझाव दिया, यानी कुछ अच्छी उपयोगी पुस्तकें हमेशा अपने झोले में अपने साथ रखें, जब भी लोगों से मिलें उनसे बात करें, चर्चा करें, उन्हें वो पुस्तक पढ़ने को दें, या समय हो तो कुछ पढ़कर सुनाएं। मतलब ज्ञान को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक सक्रिय रूप से ले जाना होगा, ज्ञान की लौ जलानी होगी।
तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि पूज्य गुरुदेव का संदेश एकदम साफ और सीधा है, असली बदलाव बाहर की परिस्थितियों में ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो तो अपने अंदर लाना होगा, अपने विचारों में।
बिल्कुल,
अगर हम अपनी सोच को सुधार लें, उसे उन्नत बना लें, विवेकशील बना लें, तो व्यक्तिगत जीवन में शांति, परिवार में सुख और समाज में तरक्की, ये सब अपने आप आने लगेगा, रास्ता वहीं से खुलेगा।
एकदम सही, और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया घड़ते हैं, हमारी वास्तविकता बनाते हैं,
हाँ,
तो क्यों ना इस हफ्ते हम सब अपनी किसी एक पुरानी बेकार की नकारात्मक सोच को पहचानें और सिर्फ उसे बदलने की एक कोशिश करें। सोच कर देखें, सिर्फ एक विचार बदलने से क्या क्या बदल सकता है।
बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।